हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत सत्र के 11वें दिन। हमने मध्य लीला प्रारंभ कर दी है चैतन्य चरितामृत की, और हमने देखा कि किस प्रकार से पहले दो अध्यायों में कविराज गोस्वामी संपूर्ण शेष लीला का सारांश बताते हैं। तीसरे अध्याय में संन्यास लेने के पश्चात महाप्रभु वृंदावन जाने की अभिलाषा रखते हैं, लेकिन रास्ते में नित्यानंद प्रभु उन्हें भटका के जो है वो अद्वैताचार्य का घर शांतिपुर पहुंचा देते हैं, और वहां पर माँ शची चैतन्य महाप्रभु से मिलती है और निवेदन करती है कि कृपया आप जगन्नाथपुरी में ही रहिए ताकि आपका समाचार हमें हमेशा मिलता रहे और हमारा भी समाचार आप तक पहुँचता रहेगा। तो इस प्रकार से तीसरा अध्याय था जिसका शीर्षक था महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर पर, और वहां से फिर महाप्रभु चार भक्तों को लेके निकल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी की ओर। वो चार भक्त थे, आपको याद होगा, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त। तो इन सबके साथ महाप्रभु जा रहे थे। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जाते जाते रास्ते में उन्हें रेमुणा गांव लगता है, और वहां पर खीरचोर गोपीनाथ जी इनका मंदिर था। चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर किस प्रकार से बहुत सुंदर नृत्य कीर्तन किया, वहां की खीर खाई, और ईश्वरपुरी से जो उन्होंने उसकी कथा सुनी थी माधवेंद्रपुरी की और खीरचोर गोपीनाथ की, वो सारी कथा अपने भक्तों को वहां पर सुनाई, और वो आगे आगे गए। तो चौथा अध्याय जिसका शीर्षक था माधवेंद्रपुरी, उनकी भक्ति का गुणगान, और खीरचोर गोपीनाथ और गोपाल जी का प्राकट्य। उसके पश्चात वो आगे चलते चलते कटक गांव में पहुंचते हैं, और वहां पर वो साक्षी गोपाल भगवान के विग्रह के दर्शन करते हैं, वहां पर भी कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, और वहां पर क्योंकि नित्यानंद प्रभु पहले ही भारत भ्रमण कर चुके थे तो उन्हें उस क्षेत्र का ज्ञान था, और वहां के लोगों से उन्होंने उस समय साक्षी गोपाल जी की कथा सुन के रखी थी, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु अभी साक्षी गोपाल की कथा बताते हैं और सारे वहां पर जो है वो सुनते हैं। वक्ता नित्यानंद, श्रोता श्री चैतन्य। तो इस प्रकार से जो है वो पांचवा अध्याय साक्षी गोपाल, ये वर्णन हमने किया। और साक्षी गोपाल के अंत में हमने देखा कि किस प्रकार से दंड भंग नदी उसका पास टाइम आता है। नित्यानंद प्रभु दंडा तोड़ देते महाप्रभु का, क्योंकि शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से वो परमहंस से भी ऊंचे स्तर पर है, इसलिए उन्हें दंडे की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नित्यानंद प्रभु तोड़ देते हैं। महाप्रभु गुस्सा हो जाते हैं उनके ऊपर और कहते हैं कि जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन के लिए एक तो मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो आप आगे जाइए, और मुकुंद दत्त कहते हैं कि भगवान आप आगे जाइए, हम पीछे पीछे चलते हैं। तो अभी जगन्नाथपुरी में क्या हुआ इसकी चर्चा हम लोग आज करने जा रहे हैं, अध्याय 6। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। तो इस प्रकार से अभी महाप्रभु आवेश में आके हुए जगन्नाथ जी की दिशा की ओर भागते 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 जा रहे हैं। आवेश चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, जगन्नाथ देखी प्रेम होइला अस्थिरे। जैसे महाप्रभु वहां पर जाते हैं और जगन्नाथ जी को देखते हैं, वो बहुत अस्थिर हो जाते हैं और प्रेम के भाव के आवेश में आ जाते हैं, और वो जगन्नाथ जी को देखते और जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए महाप्रभु भाग रहे हैं, और भागते भागते जब जाते हैं तो उनके अंदर प्रेम पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है और भावावेश होकर महाप्रभु वहीं पर गिर पड़ते हैं। जब महाप्रभु वहां पर गिर पड़ते हैं, वहीं पर नजदीक सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर खड़े रहते हैं और वो ये सब देख रहे होते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य एक गृहस्थ है और वो जगन्नाथपुरी मंदिर में कुछ सेवाएं प्रदान करते हैं और बहुत बड़े पंडित भी हैं, तार्किक है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य देखते हैं कि यह कौन व्यक्ति आया हुआ है, और जो मंदिर के कोई सुरक्षाकर्मी थे वो लाठी लेके महाप्रभु को मारने के लिए आते हैं। ये कौन व्यक्ति अचानक आ गया और यहां पे गिर पड़ा है? तो जैसे वो मारने वाले होते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य उसे कहते कि रुको रुको रुको, इनको मत मारो, ये तो कोई सन्यासी प्रतीत हो रहे हैं। और महाप्रभु की सुंदरता इतनी अप्रतिम, सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रभु र सौंदर्य आर प्रेमे र विकार, देखी सार्वभौम हैला विस्मित अपार। उनका सौंदर्य और उनका 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 प्रेम का विकार देख के सार्वभौम भट्टाचार्य विस्मित हो जाते हैं। उसी समय जगन्नाथ जी को भोग लगाने का समय आता है। तो जगन्नाथ जी को भोग लगाना था, तब अभी चैतन्य महाप्रभु वहां पर गिर पड़े हैं, अचेत अवस्था में है, कुछ सूझबूझ नहीं है उन्हें। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं उन्हीं सुरक्षा कर्मियों को कि कृपया आप मेरी मदद कीजिए, हम इन सन्यासी महाशय को मेरे घर लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य कई सारे सुरक्षा कर्मियों की मदद लेके चैतन्य महाप्रभु को अपने घर लेके जाते हैं। तो वो अपने घर लेके गए और चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल निस्तब्ध, निर्जीव, जिस प्रकार से कोई देह पड़ा है इस प्रकार से पड़े हुए रहते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य परेशान हो जाते हैं कि ये कब सचेत होंगे। तो थोड़ा सा राई का टुकड़ा, रुई का टुकड़ा लेके वो उनके नाक के यहाँ पे रखते हैं और वो थोड़ा सा हिलता है तो उनकी जान में जान आ जाती है कि ये व्यक्ति जीवित है, मृत नहीं है। और इस प्रकार से वो परेशानी में वहां पर उनको सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहां पर अभी उनके पीछे पीछे भागते आ रहे थे नित्यानंद प्रभु और वो सब सिंहद्वार तक पहुंच जाते हैं और उत्कंठित है क्योंकि महाप्रभु दिखाई नहीं दे रहे। तो वहां पर कुछ लोग वहां पर जो खड़े थे वो चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार से एक सन्यासी आया, उसने यहां पर प्रणाम किया, वो गिर गया, सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें अपने साथ घर पर। नित्यानंद प्रभु वो सब लोग सुन रहे हैं, तमें आएंगे, अपने प्रयास भी जारी रखे हुए, लेकिन महाप्रभु बिल्कुल होश में आने का संकेत नहीं दे रहे थे। तो उस समय जब नित्यानंद प्रभु और सब लोग आ जाते हैं तब सार्वभौम भट्टाचार्य सबका आदर आतिथ्य करते हैं, सबको स्वागत करके घर में बुलाते हैं, उनके जलपान की व्यवस्था करते हैं। और जब गोपीनाथ आचार्य पहली बार महाप्रभु को देखते हैं, क्योंकि गोपीनाथ आचार्य ने संन्यास के पश्चात महाप्रभु को अभी देखा हुआ नहीं था लेकिन वो महाप्रभु को जानते थे, तो गोपीनाथ आचार्य एक साथ दुखी भी हो जाते हैं और आनंदी भी होते हैं। आनंदी इसलिए होते हैं क्योंकि पहली बार उन्हें अभी महाप्रभु का दर्शन मिल रहा था इतना सुमधुर, और दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वही महाप्रभु अभी अचेतन अवस्था में है, उनकी चेतना नहीं है, तो इसलिए वो दुखी थे। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो अपना लड़का चंदनेश्वर उनको बुलाते हैं, चलो चंदनेश्वर यहां आओ। और चंदनेश्वर को आज्ञा देते हैं कि ये जो सारे भक्त आए हुए हैं इन सबको जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लेके जाओ, क्योंकि अभी ये महाशय यहां पर तो अचेत अवस्था में पड़े हैं, पता नहीं कब चेतना अवस्था में आ जाएंगे, मैं यहीं पर रहता हूं, तुम चंदनेश्वर इन सबको जो है वो जगन्नाथ जी के दर्शन करा के लेके आओ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का लड़का चंदनेश्वर सबको जगन्नाथ जी के दर्शन कराने के लिए लेके जाते हैं। जब सारे भक्त जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए लेके जाते हैं, अभी नित्यानंद प्रभु वो भाव विभोर अवस्था में चले जाते हैं, वो भगवान का दर्शन करते हैं। फिर पुजारी वहां पर जो वो जगन्नाथ जी की माला, जगन्नाथ जी का कुछ महाप्रसाद नित्यानंद प्रभु को देता है, नित्यानंद प्रभु बहुत खुश हो जाते हैं, सारे भक्त जो है वो वहां पर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और सारे भक्त दर्शन लेके वहां पर वहां से प्रसाद लेके वो पुनः सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर आ जाते हैं। तो जैसे अभी सब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर आ जाते हैं, सब लोग अभी कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। नित्यानंद प्रभु को पता था महाप्रभु को सचेत करने का एक ही रास्ता है, तो वो जोर से कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। कुछ समय पश्चात महाप्रभु सचेत अवस्था में आ जाते हैं और जोर से हरि हरि कह के वो उड़ जाते हैं। जैसे ही वो उड़ जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य सबसे पहले उनके जान में जान आ जाती है और सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आप अभी अभी चेतना अवस्था में आए हैं, आप जाइए सारे भक्त मिलके समुद्र में स्नान करके आ जाइए, तब तक मैं जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद की व्यवस्था यहां पर करता हूं। तो सारे भक्त इस प्रकार से अभी स्नान करने के लिए चले जाते हैं, जगन्नाथ जी का सारा महाप्रसाद का जो है वो व्यवस्था वहां पर करते हैं। फिर सारे भक्त आने के पश्चात अच्छे से सार्वभौम भट्टाचार्य का आदर आतिथ्य स्वीकार करते हुए प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रसाद में क्या क्या था वो भी वितरण कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ में करते हैं। और प्रसाद के पश्चात फिर अभी सबका प्रसाद होने के पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य वो सबको प्रसाद सर्व करते हैं सबसे प्रथम। और सबका सर्विंग होने के पश्चात, सबका प्रसाद होने के पश्चात वो दोनों अभी प्रसाद लेने के लिए बैठ जाते हैं। तो अभी सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य दोनों ने प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के पश्चात अभी वो महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। और जैसे अभी वो महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को कहते हैं नमो नारायणाय, महाप्रभु उनको कहते हैं कृष्णे मति रस्तु। तो नमो नारायणाय, ये मायावादी एक दूसरे को इस प्रकार से बुलाते हैं, नमो नारायणाय, नमो आप नारायण है, मैं भी नारायण हूं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, नमो नारायणाय। और महाप्रभु फिर उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये शायद वैष्णव सन्यासी दिखाई दे रहा है, और इसलिए ये कृष्ण मति रस्तु ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य बात करना प्रारंभ करते हैं गोपीनाथ आचार्य की तरफ देख के, अरे मैं तो इनको जानता हूं, ये पूर्व आश्रम में गृहस्थ थे और ये विश्वंभर नाम से जाने जाते थे, निमाई पंडित, अच्छे से जानता हूं मैं इनको। फिर गोपीनाथ आचार्य कहते हैं हाँ ये तो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र है, और इनकी माता है शची देवी, और ये नीलांबर चक्रवर्ती के दुहित्र है, मतलब नीलांबर चक्रवर्ती के पुत्री के पुत्र, इसे दुहित्र कहते हैं संस्कृत में, तो ये तो दुहित्र हो जाते हैं इनके। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि हाँ मेरे पिता महेश्वर विशारद और नीलांबर चक्रवर्ती दोनों सहपाठी थे, दोनों एक साथ पाठशाला जाया करते थे, एक साथ पढ़ाई किया करते थे, तो इस प्रकार से हम जो है वो अभी संबंधी भी बन जाते हैं। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि महाप्रभु से कृपया आप संन्यास आश्रम में हैं, मैं तो एक गृहस्थ हूँ, इस आश्रम में मैं रहता हूँ, आप कृपया मुझे आश्रय दीजिए, आपके मैं शरण ग्रहण करता हूँ, मुझे आपके चरणों का जो है वो दास बना लीजिए। इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से कहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अतिशय नम्र भाव से सार्वभौम भट्टाचार्य को जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्ही जगत गुरु सर्व लोकहित करता, वेदांत पढ़ाओ सन्यासी उप करता। महाप्रभु कहते हैं कि आप तो जगत गुरु है, आप जगत गुरु हैं और सारे लोगों के हित करने वाले हो, वेदांत करता, और आप वेदांत का पठन करते हैं, वेदांत को सिखाते हैं, और सन्यासी रूप करता, आप तो सन्यासी के ऊपर भी उपकार कर सकते हैं, उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। आमी बालक सन्यासी भाल मंद नहीं जानी, तुम्हार आश्रय नीलू गुरु करी मानी। मैं तो एक छोटा सा बालक सन्यासी हूं, मैं क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी नहीं जानता हूं, इसलिए मैं आपके आश्रय में आया हूं, आपको मैं गुरु बोल के स्वीकार करता हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपका संग मुझे चाहिए था, इसलिए मैं यहां पर आया, और कितनी बड़ी विपत्ति में मैं फंस गया था, बाप रे बाप, अचेतन ये सब बता रहे थे, तो आपने मेरी इस बहुत बड़े विपत्ति से रक्षा की है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया आप मुझे उपदेश दीजिए, आपका संग मुझे चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं फिर देखो इसके बाद कभी अकेले जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मत जाना, क्योंकि तुम ऐसा अचेतन हो जाते हो। महाप्रभु फिर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो नजदीक जाना तो छोड़ दो, मैं तो केवल गरुड़ स्तंभ से ही भगवान के दर्शन करूंगा, बिल्कुल आगे भी नहीं जाऊंगा। और इस प्रकार से वहां पर रहते हैं महाप्रभु। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य, उनकी एक मौसी नजदीक ही रहा करती थी, लेकिन अभी घर पे कोई थे नहीं, इसलिए महाप्रभु के रहने की व्यवस्था सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके मौसी के घर पर कर दी थी। और गोपीनाथ आचार्य को सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आप जाओ महाप्रभु को दर्शन कराओ जगन्नाथ जी का, और उनको उनके निवास स्थान पर छोड़ के वापस आ जाइए यहां पर। तो इस प्रकार से गोपीनाथ आचार्य, मुकुंद दत्त सब महाप्रभु को लेके जाते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन कराते हैं, और उनके निवास स्थान पर छोड़ के दोनों गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त पुनः सार्वभौम भट्टाचार्य इनके घर पर जो है वो आ जाते हैं। फिर अभी सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साथ चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं, अरे क्या विलक्षण सन्यासी है, इसका नाम क्या है, क्योंकि अभी तक उन्हें नाम भी नहीं पता था, क्योंकि पूर्व गृहस्थ आश्रम का पता था, लेकिन अभी सन्यासी कौन है, कहां से आए, ये बाकी कुछ पता नहीं था। तो फिर गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि इनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, गुरु है केशभारती, घर पर रुके थे लेकिन फिर भी आप उन्हें नहीं समझ पाए हैं, क्या जीवन है, लालत है आपके जीवन पर। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, अच्छा मेरे जीवन पर लालत है, तो कृपा के बिना नहीं समझ सकते भगवान को। गोपीनाथ आचार्य करते हैं, जी हाँ कृपा के बिना नहीं समझ सकते। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि आपके ऊपर कृपा हुई है। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि परम सत्य का ज्ञान किसी व्यक्ति को हो जाए, यही सबसे बड़ी किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा हो सकती है। और मुझे ज्ञान हो गया है कि वही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण उनके रूप में आए हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरे ऊपर कृपा हो गई है। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि देखो, हम तो केवल शास्त्रों की चर्चा कर रहे थे, आप अपराध मत मान लेना, मैं गुस्सा नहीं हुआ हूं आपके ऊपर। ले जो कृष्ण चैतन्य है, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन ये भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कभी मेरे सामने बोलने का नहीं, क्योंकि भगवान कलयुग में आते ही नहीं है। उनका वेदांत में नाम है त्रियुगी, वो तो केवल तीन युग में आते हैं, कलयुग में आते ही नहीं है। फिर गोपीनाथ आचार्य और अच्छे से तर्क लगाते हैं उनके साथ कि देखो, भगवान कलयुग में लीला अवतार के रूप में नहीं आते हैं, लेकिन युगा अवतार के रूप में अवश्य आते हैं। महाभारत ले लो, श्रीमद् भागवत ले लो, उसका तो आपने कभी चिंतन ही किया नहीं है। भागवत का श्लोक खोल के देख लो, 11:5-32, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधसः। कि ये वर्णन है, भगवान आते हैं और कलयुग में यही भगवान है। फिर गोपीनाथ आचार्य कहते हैं, आपको भूल के कुछ फायदा ही नहीं है, आप तो पड़ गए शुष्क तार्किक। बंजर भूमि में कोई व्यक्ति बीज डाल देगा तो उसका उसको कैसे फल लग सकते हैं, आपको बोल के फायदा ही नहीं है, आप चले जाइए, आपको कृपा ही नहीं मिली भगवान की। फिर इस प्रकार, क्योंकि ये दोनों जो थे ना, क्योंकि मैंने पहले बताया गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनों ही थे, इसलिए दोनों के बीच में इस प्रकार से जो है मजाक चलता रहता था। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते ठीक है ठीक है ठीक है, अभी टाइम हो गया है, जाओ तुम्हारे भगवान को मतलब कृष्ण चैतन्य को बुला के लेके आओ, प्रसाद का टाइम हो गया, अभी प्रसाद लेंगे। तो फिर गोपीनाथ आचार्य जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करते हैं प्रसाद के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ पर। अभी महाप्रभु जैसे आते हैं, गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त इनका चेहरा पड़ा हुआ, और वो बताते महाप्रभु को ये इतना तार्किक व्यक्ति है, ये कुछ भी समझ नहीं सकता ठीक से। फिर महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा किधर है, उसने तो मेरा जीवन बचाया है, मैं अचेत अवस्था में था, उन्होंने मेरी रक्षा की, और ये मेरा संन्यास धर्म की रक्षा ही करना चाहते हैं मुझे वेदांत पढ़ा के, बहुत अच्छी बात है, इनसे भला व्यक्ति और कोई हो सकता है, उनका कोई दोष नहीं है इसके अंदर। फिर अभी दूसरे दिन सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और वो कहते कि चलिए मैं आपको जगन्नाथ जी का दर्शन दिलाता हूं। और दर्शन लेने के बहाने वो जगन्नाथ मंदिर की ओर चले जाते। तो जैसे ही दोनों अभी गए वहां पर, सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के लिए एक ऊंचा आसन रखते हैं और ऊंचे आसन पे उनको बिठाते हैं। और जैसे वो महाप्रभु को ऊंचे आसन में बिठाते हैं और स्वयं नीचे बैठ जाते हैं और उन्हें वेदांत का पाठ पढ़ाने लगते हैं। तो अभी वेदांत सिखा रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य नीचे बैठ के, महाप्रभु ऊपर आसन में बैठे हुए और सुन रहे हैं। इसका बहुत सुंदर तस्वीर भी इस मध्यलीला की किताब में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कलर फोटो। तो महाप्रभु ऊपर बैठे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य नीचे से सुना रहे हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, सर्वप्रथम वेदांत श्रवण ए सन्यासी रा धर्म निरंतर कर तुम्हें। वेदांत श्रवण, ये सन्यासी का धर्म होता है कि वेदांत का अध्ययन करे, पाठ पढ़े, इसलिए आप जो है वो निरंतर रूप से वेदांत को पढ़ते रहिए। और ऐसा कह के उन्हें वेदांत सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, ऐसे लगातार 7 दिन तक वेदांत सुना रहे सार्वभौम भट्टाचार्य। चैतन्य महाप्रभु एक टक देख के सुन रहे हैं, न कुछ भाव है चेहरे पे, न कुछ मुद्रा है, न कि हूं न कि चू, न हा न ना, कुछ नहीं, एक्सप्रेशनलेस सुन रहे सुन रहे सुन रहे। 8वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य परेशान हो जाते हैं, अरे तू केवल सुन रहा है, न कि हूं न कि चू, जो बोल रहा हूं मैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपने कहा सन्यासी का धर्म है सुनते रहना, इसलिए मैं सुन रहा हूं सब कुछ, मुझे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अरे समझ में कुछ नहीं आ रहा तो बोलने का ना, पूछने का प्रश्न, सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि तो पूछने का। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वेदांत सूत्रों तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, सब कुछ पता है मुझे, लेकिन जो आपकी टीका है, जो आप बता रहे अर्थ उसका, वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। सूत्र अर्थ भाष्य कहे प्रकाशिया, तुम्ही भाष्य कह सूत्र अर्थ अच्छा दिया। ये जो वेदांत के सूत्र है वो एक प्रकाश के समान है जो प्रकाशित होते हैं। भाष्य कहे प्रकाशिया, वो सूत्र अपने आप में स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आप जो भाष्य कर रहे हो वो उसे आच्छादित कर रहा है, उस अर्थ को ढक रहा है, इसलिए वो मुझे अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। आप अपनी मनोकल्पना से इसका अर्थ बता रहे हैं। व्यास सूत्र अर्थ है सूर्य किरण स्वकल्पित भाष्य मेघे कोरे आच्छादन। व्यास के द्वारा जो वेदांत सूत्र की रचना की गई है यही सूर्य किरण, जिस प्रकार से सूर्य किरण होते हैं उस प्रकार से व्यासदेव द्वारा रचित ये अर्थ स्वयं प्रकाशित है, सुस्पष्ट है, लेकिन स्वकल्पित भाष्य, आपने जो अपनी मनोधारणा से जो भाष्य दिया है और जो कर रहे हैं आप, मेघे करे आच्छादित, वो मेघ के समान है जो आच्छादित कर रहे हैं व्यासदेव ने जो परिभाषा सूत्र दिए है उनको। इसलिए महाप्रभु सारा तत्वज्ञान उन्हें सुनाते हैं कि किस प्रकार से भगवान एकमात्र तत्व है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान है और उनकी कई सारी शक्तियां होती है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, इन सब शक्तियों का ज्ञान वहां पर प्रदान करते हैं कि अंतरंगा शक्ति जो है वो भगवान की सच्चिदानंद स्वरूप वाली शक्ति है, भगवान कैसे षडैश्वर्य पूर्ण होते हैं उसका ज्ञान बताते हैं, और तटस्थ शक्ति यानी जीव शक्ति किस प्रकार से हम भगवान से अभी अलग हुए हैं, और बहिरंगा शक्ति माया शक्ति वो किस प्रकार से सृजन करती है और जीव को हमेशा भ्रमित करती है। मायाधीश माया वश ईश्वर जीवे भेद हे न जीवे ईश्वर सह कहत अभेद। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मायाधीश जो है वो ईश्वर है और जो जीव है वो मायावश है, तो ये दोनों के अंदर जो है वो भेद है, ये भेद है। ईश्वर है वो मायाधीश और जीव मायावश, मायाधीश और मायावश ये दोनों के अंदर अंतर है। जीव हमेशा भगवान के वश में ही रहता है, वो कभी भगवान नहीं बन सकता। जिस प्रकार से कोई पारस से यदि हम लोग कुछ लोहे को स्पर्श करें तो वह सोता है, लेकिन पारस मन भी प्रभावित बताते हैं कि सारे वेदांत में ओमकार इस शब्द को महावाक्य कहा गया है, प्रणव सर्व वेदेशु। जिस प्रकार से हमें याद है कि प्रकाशानंद सरस्वती के साथ भी जब महाप्रभु चर्चा कर रहे थे आदि लीला के सातवें अध्याय में, यही सिद्धांत तो उन्होंने वहां पर स्थापित किया था कि जो ओमकार है वो प्रणव, वह एकमात्र जो है वो वेदों का सार है और वही महावाक्य होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे शंकराचार्य ने उस महावाक्य को आच्छादित करके स्वयं एक दूसरा तत्वमसी करके महावाक्य स्थापित कर दिया है, वो बिल्कुल महावाक्य नहीं है कि तत्वमसी मतलब तुम वही हो नारायण, इसलिए वो नमो नारायण करके एक दूसरे को पुकारते हैं, तो ऐसा नहीं है। ओम जो है वो सही में महावाक्य है, न कि तत्वमसी। और चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से बता रहे थे, तब सार्वभौम भट्टाचार्य कई सारे और शास्त्रों से तर्क उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। महाप्रभु सारे तर्कों को एक एक करके जो है वो खंडन कर देते हैं और भक्ति की स्थापना करते हुए कहते हैं, भगवान संबंध भक्ति अभिदेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वस्तु कहे। सारे वेदों में केवल ये तीन वस्तु बताई गई है। क्या है ये तीन वस्तु? भगवान संबंध, भक्ति अभिदेय, प्रेम प्रयोजन। भगवान संबंध, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, हम उनके अंश है और हमारे बीच में ये ईश्वर और सेवक और सेव्य ये संबंध है, यह है संबंध ज्ञान, भगवान संबंध। उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए हमें जिस विधि का पालन करना होता है उसका नाम है भक्ति, भक्ति अभिदेय, उसे कहते हैं अभिदेय। और तीसरा है प्रेम प्रयोजन, वो भक्ति करने के पश्चात हमें जो भगवान के प्रति प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुना श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर ये उदय, वो जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है उसे कहते हैं प्रयोजन। और सारे वेदों में तीन वस्तु कहे, ये तीन चीजों के बारे में ही जो है वो ज्ञान दिया हुआ है। लेकिन जो शंकराचार्य उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो श्लोक बताते हैं कि किस प्रकार से शंकर पार्वती से कहते हैं कि मायावादम असत शास्त्रम, ये मायावाद असत शास्त्र का, मैं स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में जाके जो है वो लोगों को भ्रमण करूंगा और इस मायावाद शास्त्र का प्रचार करूंगा, तो ये उनका भी दोष नहीं है, भगवान की इच्छा से उन्होंने जो है वो आच्छादित किया हुआ है। और फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भक्ति कितनी श्रेष्ठ है और भगवत तत्व कितना महान है कि महाप्रभु कहते हैं कि बड़े बड़े मुक्त लोग भी ऐसे भगवान की भक्ति में लगते हैं। और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक प्रमाण के रूप में बताते हैं, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिहि। कि आत्माराम जो आत्मसंतुष्ट लोग हैं और जो मुनि लोग हैं, निर्ग्रंथा अपि जिनके हृदय में बिल्कुल आसक्ति नहीं रहती, वो भी उरुक्रमे, उस उरुक्रमे भगवान का एक नाम है, उनकी अहेतु की भक्ति में जो है वो लगे रहते हैं, ऐसा ये दिव्य श्लोक है। ऐसा जो इसे महाप्रभु बताते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि चलो आप इस श्लोक की व्याख्या करो और मुझे समझाओ। महाप्रभु कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से, पहले आप इसकी व्याख्या मुझे समझाइए, आप क्या समझे हैं। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य भी अलग 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 शास्त्रों को प्रमाण लेके 9 तरीके से इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। और 9 श्लोक से व्याख्या करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु अचंभित होकर उनके ओर देखते हैं, वाह क्या अर्थ बताया सार्वभौम भट्टाचार्य आपने, इतना सुंदर अर्थ तो शायद देवों के गुरु बृहस्पति भी नहीं बता पाएंगे, वाह। लेकिन यह तो केवल पांडित्य पूर्ण हुआ, इसमें तो भक्ति का लवलेश भी नहीं है। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते कि अभी आप बताइए। फिर चैतन्य महाप्रभु जो है वो सारे इस श्लोक के एक 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 शब्दों को अलग अलग करके उनके 11 विभाग बना देते हैं। आत्मा रामः च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिहि। तो ऐसे 11 शब्दों में विभाजित करते हैं, सबका आत्माराम शब्द से अर्थ जोड़ते हैं और इस प्रकार से 18 अलग अलग परिभाषाएं बताते हैं एक ही श्लोक की। और ये जो 18 बताई उसमें सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो 9 अर्थ बताए थे उनको स्पर्श भी नहीं किया महाप्रभु ने। तो जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य 18 अर्थों को सुनते हैं, वो पहले से इतने पंडित थे, जैसे वो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के मुख से ये 18 अलग अलग व्याख्या सुनते वो भौचक्के रह जाते हैं और वहीं पर महाप्रभु को शरण जाते हैं कि आप तो स्वयं भगवान ही हो, यहो तो साक्षात कृष्ण मोई न जानिया महा अपराध कैनु गर्वित होइया। ये तो साक्षात कृष्ण है, मैं जान नहीं पाया कैसा पागल व्यक्ति हो, महा अपराध कैनु गर्वित होइया, मुझे गर्व हो गया था अपनी पांडित्य के ऊपर, इसलिए मैं अपराध कर बैठा हूं, छी 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 लालत है मेरे जीवन के ऊपर। फिर महाप्रभु देखते हैं कि इसके हृदय में अभी थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, महाप्रभु अभी तक कहीं पर नहीं दिखाया था, ऐसा उनके आयुष्य काल में पहली बार महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर कृपा करने के लिए अपना चतुर्भुज रूप उनके सामने प्रकट करते हैं। वो चतुर्भुज रूप अचानक अंतर्धान हो जाता है और वहां पर द्विभुज कृष्ण अपने हाथ में वंशी लेके खड़े होते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने। सार्वभौम भट्टाचार्य अभी भी अचंभित है और केवल प्रणाम कर रहा है और उनके चरणों को पकड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, निस्तब्ध निर्वचन सार्वभौम भट्टाचार्य है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु फिर पुनः चैतन्य महाप्रभु के रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य उन चैतन्य महाप्रभु को देख के कुछ समय के अंदर ही 100 श्लोकों की रचना करते, महाप्रभु का गुणगान करते हैं। चैतन्य शतकम करके एक अलग से पुस्तक आता है जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो महाप्रभु की स्तुति करते हुए जो 100 श्लोकों की रचना उन्होंने की थी। और फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे वह 100 श्लोक मानो गंगा का प्रवाह है ऐसे चल रहे थे, बृहस्पति भी शायद ऐसे श्लोकों की रचना इतने कम समय में नहीं कर पाए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु अपनी और कृपा दर्शाते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य को आलिंगन करते हैं। जैसे महाप्रभु का आलिंगन पाते सार्वभौम भट्टाचार्य प्रेम से ओतप्रोत हो जाते हैं और वहीं पर कृष्ण नाम का कीर्तन और नृत्य वहां पर प्रारंभ कर देते हैं। गोपीनाथ आचार्य मुकुंदत सारे भक्त वहां पर होके हरी हरी करके वो वहां पर वो स्वयं नाचने लगते हैं। गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु को देख के कहते हैं कि महाप्रभु अपरंपार, क्या कृपा आपने इस व्यक्ति को दिखाई है, ये तार्किक व्यक्ति था, अब ये कृष्ण के कीर्तन में नृत्य कर रहा है। महाप्रभु कहते हैं कि ये तो आपके जैसे शुद्ध भक्त के संग का प्रभाव है और जगन्नाथ जी की कृपा इन व्यक्ति सार्वभौम के ऊपर हो गई है, इसलिए ये सब लक्षण वह प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी सार्वभौम भट्टाचार्य और स्तुतियां चैतन्य महाप्रभु की करते हैं और सारे लोग वहां से अभी चले जाते हैं। महाप्रभु अपने घर जाते हैं जहां पर निवास की व्यवस्था थी। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु, उनका नित्य का क्रम था कि शयन उत्थान मतलब जब भगवान का वेकिंग अप होता है उसके पश्चात दर्शन करने के लिए महाप्रभु नित्य रूप से जाया करते थे। तो अगले दिन जब महाप्रभु वहां पर जाते हैं, शयन उत्थान का दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी का, और पुनः पुजारी जो है वो कुछ माला और प्रसाद महाप्रभु को अर्पण करते हैं। वो प्रसाद वो माला लेके महाप्रभु अभी सार्वभौम भट्टाचार्य को मिलने के लिए आते हैं। जैसे महाप्रभु घर में प्रवेश करते हैं उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य निद्रा से उठते रहते हैं और वो उठते उठते भी कृष्ण कृष्ण ऐसा नाम ले रहे थे। महाप्रभु देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, इतना परिवर्तन आया है कि अभी उठते वक्त भी इन्हें कृष्ण का स्मरण हो रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महाप्रभु की ओर देखते हैं वहां वहीं पर साष्टांग प्रणाम अर्पण कर देते हैं और स्तुतिगान करना प्रारंभ कर देते हैं। महाप्रभु फिर उसके पश्चात कहते हैं कि ये लीजिए सार्वभौम, आपके लिए मैंने जगन्नाथ जी का प्रसाद लाया है। सार्वभौम जी अपने हाथ पर वो प्रसाद लेते हैं और तुरंत एक श्लोक बोल के उस प्रसाद का ग्रहण कर लेते हैं। महाप्रभु कहते हैं अरे आप इतने पंडित हैं, आपने तो नहाया नहीं है, ब्रश नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, आप अभी डायरेक्ट प्रसाद कैसे ग्रहण कर लिया। फिर और प्रसाद की महिमा का गुणगान करना सार्वभौम भट्टाचार्य प्रारंभ कर देते हैं कि इस प्रकार से भगवान का प्रसाद किसी भी अवस्था में जो है वो स्वीकार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य का परिवर्तन देख के महाप्रभु और खुश हो जाते हैं और जो प्रसाद के ऊपर इतनी श्रद्धा है, महाप्रभु वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य को आलिंगन देते हैं, दोनों वहां पर कीर्तन में नृत्य करते हैं और उसके पश्चात महाप्रभु वहां से खुश होकर अभी चले जाते हैं। और उस दिन के पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य भक्ति के अलावा और कुछ भी जो है वो नहीं जानते थे। सारे शास्त्रों की व्याख्या अभी उन्होंने भक्ति के आधार पर करना प्रारंभ कर दिया था। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं और वो कहते हैं कि महाप्रभु एक प्रश्न है। महाप्रभु उससे पूछिए, भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते होइले मन, भक्ति का साधन कैसे करना चाहिए ये मेरे मन में प्रश्न है। प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन, और चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन के बारे में बताते हैं, हरेर नाम श्लोक के बारे में बताते हैं। और इस प्रकार से जो है वो सार्वभौम भट्टाचार्य फिर उसके पश्चात जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं और दर्शन करके वापिस अपने घर लौटते हैं। लौटते लौटते वो दो श्लोकों की रचना करके जगदानंद और दामोदर, इन्हें उसे कहते ताड़पत्र के ऊपर उन्होंने श्लोक की रचना की थी। दो श्लोकों की रचना उन्होंने की थी और वो दो श्लोकों का ताड़पत्र वो जगदानंद और दामोदर को कहते हैं कि कृपया इसे आप महाप्रभु के पास देके आइए। तो वो दोनों ताड़पत्र लेते हैं और महाप्रभु के पास जा ही रहे होते हैं उसी समय मुकुंद बीच में आ जाते हैं और मुकुंद कहते हैं कि मुझे दिखाओ क्या है। और जैसे मुकुंद देखते हैं ताड़पत्र के ऊपर दो श्लोक है, मुकुंद उन्हें अपने दीवार के ऊपर लिख लेते हैं तुरंत। और वो दो भक्त कुछ समझ नहीं पाते हैं, वो ताड़पत्र लेके महाप्रभु के पास जाते हैं। महाप्रभु जैसे ही वो श्लोक पढ़ते हैं ताड़पत्र के ऊपर के, उस ताड़पत्र को फाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन क्योंकि मुकुंद दत्त ने पहले से ही दीवार के ऊपर लिखा हुआ था और अभी तक उन्होंने कंठस्थ भी कर लिया था और अभी तक सारे भक्तों का वो कंठस्थ भी हो गया था, ये ऐसे जो है वो दो श्लोक, यही दो श्लोक भक्त कंठ रत्न हार सार्वभौमेर कीर्ति घोषे ढक्का वाद्याकार। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये दो श्लोक उस समय से लेके बाद तक जो है वो भक्तों के गले के कंठहार के रूप में बने रहे, जिससे सार्वभौम भट्टाचार्य की कीर्ति का जो है वो डंका और बजने लगा कि उन्होंने इन दो श्लोकों की रचना की थी। ऐसे ये सुमधुर और महान है ये दो श्लोक। आप सुनना चाहेंगे ये दो श्लोक कौन से हैं? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्यस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, जो कृष्ण भक्ति के लिए अनावश्यक वस्तु है उनसे वैराग्य प्राप्त करना, उसका वो आध्यात्मिक विद्या। और निज भक्ति, स्वयं के प्रति भक्ति किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, मतलब भगवान के प्रति भक्ति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति। शिक्षा अर्थम एक पुरुष पुराण, वही पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण उस शिक्षा को प्रदान करने के लिए अभी कैसे अवतरित हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ पर वही पुराण पुरुष वैराग्य की विद्या प्रदान करने के लिए और स्वयं के प्रति भक्ति प्रदान कर लिए अभी अवतरित हुए हैं। ऐसे कृपाम्बुदी, ऐसे कृपा के सागर है इन चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। कृपाम बुद्धि यस्तमहं प्रपद्ये, ऐसी महाप्रभु की वो महति गाया करते थे। ये एक श्लोक है। और दूसरा श्लोक, काला नष्टम भक्ति योगम निजम यह प्रादुष्कृतम कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूतस्तस्य पदारविंदे गाढ़म गाढ़म लियताम चित्त भृंगः। काला नष्टम भक्ति योगम निजम यह, स्वयं के प्रति भक्ति मतलब भगवान श्री कृष्ण के भक्ति, भक्ति जो है वो काला नष्टम, काल के प्रभाव से जो है वो नष्ट हुई थी। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि चौथे अध्याय में कि योगो नष्ट परंतप, किस प्रकार से जो है वो काल के प्रभाव में ये ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए मैं अभी तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। इसी प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि काला नष्टम भक्ति योगम निजम यह, जो काल के प्रभाव में कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो नष्ट हो गई थी, प्रादुष्कृतम उसको पुनः प्रस्थापित करने के लिए, उसको पुनः जागृत करने के लिए कृष्ण चैतन्य नामा, कृष्ण चैतन्य नाम लेके आविर्भूतस, जो आविर्भूत हुए हैं, जिन्होंने अभी अवतार लिया हुआ है, पदारविंदे गाढ़म गाढ़म लीलया चित्त भृंग, मेरा चित्त एक भृंग के समान है, एक भौरे के समान है, और महाप्रभु के चरण कमल एक जो है वो कमल के समान है। तो जिस प्रकार से एक भृंग हमेशा कमल की ओर आकर्षित रहता है, उसी प्रकार से मेरा चित्त ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गाढ़ आलिंगन, गाढ़म गाढ़म लियताम चित्त भृंगम, तो मेरा चित्त इस प्रकार से गाढ़ आलिंगन महाप्रभु के चरणों को हमेशा करते रहे, यही मेरी अभिलाषा है। देखिए कितना परिवर्तन हुआ है सार्वभौम भट्टाचार्य इनके अंदर, कि जो कहते थे पहले कि भगवान त्रियोगी है और कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होता, वही अभी यहां पर कह रहे थे कि प्रादुष्कृतम चैतन्य नाम नाम कि वो अभी अवतरित हुए हैं किस कारण के लिए। तो ये दो श्लोक भक्तों के कंठहार बन गए और हर कोई जो है वो इन श्लोकों की स्तुति और सार्वभौम भट्टाचार्य की स्तुति का जो है वो गान करने लगा। सार्वभौम भट्टाचार्य अभी भक्ति के अलावा और कुछ नहीं जानते थे, केवल भक्ति और बाकी कुछ नहीं। एक दिन इसी प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य सुबह के समय चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक उच्चारण करते हैं। श्रीमद् भागवत स्कंद नंबर 10 14वां अध्याय श्लोक संख्या 8, ब्रह्मा जी द्वारा जो स्तुति अर्पण की थी भगवान कृष्ण को ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात, वो श्लोक यहां पर अभी सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु को सुनाते हैं। तत्तेनुकंपां सुशमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं रुद्वाग्वपूर्भेर्विदधान्नमस्ते जीवेतयो भक्तिपदे सदाय भाक। तो इस श्लोक का अर्थ है कि तत्तेनु अनुकंपां सुशमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतं विपाकं, जो भी हो रहा है मेरे साथ मेरे जीवन में ये भगवान की कृपा है, और मेरे आत्मकृतं विपाकं मेरे ही पूर्व कर्मों का संचित फल अभी जो है वो आ रहा है। आत्मकृतम रुद्वाग वपुर भीर विदधान नमस्ते, जो ऐसा सोचता है कि मेरे जीवन में जो सब कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा है, और ऐसा कह के भगवान को धन्यवाद करते हुए रुद्वाग वपुर भीर अपने शरीर वाचा और मन से भगवान को धन्यवाद देकर प्रणाम अर्पण करता है, वही व्यक्ति वास्तव में वो जो श्लोक है उसमें श्रीमद् भागवत में पद आता है मुक्ति पदे सदाय भाक, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं भक्ति पदे सदाय भाक। जब महाप्रभु ये श्लोक सुनते हैं, महाप्रभु कहते हैं अरे ये श्लोक में तो आखिरी पद तूने गलत कर दिया है, मुक्ति पदे चाहिए, तू भक्ति पदे कह रहा है। प्रभु कहे मुक्ति पदे इह पट होय भक्ति पदे केने पड़ के तो मार आशय। ये तो मुक्ति पदे यहां पर पाठ होना चाहिए, तुम यहां पर भक्ति पदे कह रहे हो, इसमें तुम्हारा आशय क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि ये मुक्ति शब्द से अभी मुझे नफरत हो रही है। अभी देखिए कितना परिवर्तन आया हुआ है सार्वभौम भट्टाचार्य में। जो मुक्ति 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 करके उनके पीछे भागते थे अभी तक, वो मुक्ति शब्द से भी उन्हें नफरत हो गया है। और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक का अर्थ का शब्द भी उन्होंने बदली कर दिया है। और भट्टाचार्य कहते हैं, भट्टाचार्य कहे भक्ति सम नहे मुक्ति फल, भगवत भक्ति विमुख होय दंड केवल। भट्टाचार्य कहते हैं कि भक्ति के समान जो है वो और दूसरा कोई फल नहीं है। मुक्ति तो भक्ति के सामने एक तुच्छ वस्तु है। भगवत भक्ति से कोई व्यक्ति व्यक्ति विमुख हो जाता है, भगवत भक्ति विमुख रहय दंड केवल। भगवत भक्ति से यदि कोई व्यक्ति विमुख हो जाता है तो उसे केवल यमराज के दंड ही पड़ते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति जो है वो मुक्ति से कई अधिक गुणा अधिक है। और फिर उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो मुक्ति पदे शब्द क्यों वहां पर दिया गया है। बहुत सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि देखो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सारी मुक्तियां रहती है, इसलिए वहां पर ब्रह्मा जी ने मुक्ति पदे शब्द का प्रयोग किया था। और ये श्री कृष्ण सारे मुक्तियों को प्रदान कर सकते हैं, ये इसका दूसरा अर्थ है, इसलिए वो मुक्ति पदे है। तो दो अर्थ बताते महाप्रभु वो मुक्ति पदे बरोबर क्यों है, वो सही क्यों है। सबसे पहला बताते हैं कि सारी मुक्तियों ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेके रखा है, इसलिए वो मुक्ति पदे शब्द है। और वो दूसरा बताते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सारे प्रकार की मुक्तियों को प्रदान करने के लिए योग्य व्यक्ति है, इसलिए वो शब्द मुक्ति पदे सही है। मुक्ति पदे सदाए बाक, वह व्यक्ति जो है वो मुक्ति पद को प्राप्त कर सकता है, मतलब भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है, यह सादा अर्थ है। लेकिन फिर अभी सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि महाप्रभु आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये मुक्ति शब्द से अभी थोड़ा मुझे नफरत होने लगा है। मुक्ति शब्द कहते मने होय घृणा त्रास, भक्ति शब्द कहते मने होय त उल्लास। वो कहते हैं कि जब भी मैं मुक्ति शब्द कहते मन होय घृणा त्रास, मेरे मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है अभी ये मुक्ति शब्द सुन के, और बहुत मुझे परेशानी होती है। ये मुक्ति 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 भी बहुत हो गया, ये बिल्कुल गंदा शब्द है जो भक्ति के सामने बिल्कुल तुच्छ। लेकिन देखो भक्ति कितना शब्द है अच्छा है। भक्ति शब्द कहते मने होय त उल्लास, मन उल्लासित हो जाता है जब भी हम लोग ये भक्ति शब्द को कहते हैं, कितना ये भक्ति की महानता है। और इस प्रकार से भक्ति की महानता का गुणगान सर्व भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है उनके सामने करते हैं। महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य का परिवर्तन देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और सर्वम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु केवल आलिंगन प्रदान करते हैं। और आलिंगन करने के पश्चात सर्वम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु दोनों एक साथ नाचते कीर्तन रंगे, दोनों एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं, और नृत्य वहां पर शुरू हो जाता है। और सारे भक्त बहुत ही अभी तक खुश है, और सबसे अधिक खुश होते हैं वो है गोपीनाथ आचार्य, दामोदर और मुकुंद, जो कि पहले बहुत परेशान थे सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार को लेके। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य इनका जो है वो सर्वप्रथम उद्धार किया है। उन्हें चतुर्भुज रूप भी दिखाया, उन्होंने सर्वप्रथम कृष्ण का स्वयं कृष्ण रूप भी उन्हें दिखाया है, और इस हद तक उनका परिवर्तन किया है कि अभी मुक्ति शब्द से भी सार्वभौम भट्टाचार्य को घृणा होने लगी है, और अभी वो भक्ति की बढ़ाई करना प्रारंभ किए है। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, यही महाप्रभुर लीला सार्वभौम मिलन इहा यही श्रद्धा करे करये श्रवण। इस प्रकार से महाप्रभु की और चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य इनके मिलाप का मैंने यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से जो है वो वर्णन किया है। इहा यही श्रद्धा कोरी कर ये श्रवण, जो भी इसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है क्या फल मिलेगा, ज्ञान कर्म पाश होते होय विमोचन अचिरे मिले तारे चैतन्य चरण। जो शुष्क तर्कयुक्त जो ज्ञान है और जो सकाम कर्म है, ज्ञान कर्म पांच होते हो विमोचन, ये सकाम कर्म और केवल तार्किक और शुष्क ज्ञान के बंधन से वह व्यक्ति छूट जाएगा और अचिरे मिलय तारे कृष्णर चरण, उस व्यक्ति को जो है वह चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से फलश्रुति बता के कविराज गोस्वामी यहाँ पर विराम देते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदयार आस चैतन्य चरितमृत कोहे कृष्ण दास। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि पहला श्लोक, हर एक अध्याय का पहला श्लोक कविराज गोस्वामी संपूर्ण अध्याय का सारांश बताते हैं। तो ये जो छठा अध्याय है जिसका शीर्षक है सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति, इसमें पहले श्लोक में कविराज गोस्वामी बताते हैं पूरे सार्वभौम भट्टाचार्य की जो हमने लीला अभी तक सुनी उसका उसका निचोड़ एक श्लोक में, और भगवान को प्रणाम अर्पण करते हुए नवमीतम गौरचंद्रम यह कुतर्क कर्कशाशयम सार्वभौमम सर्वभूमा भक्ति भूमान आचरत। कितना सुंदर तरीके से, एक तो उनका इलोक्वेंस कम शब्दों में पूरी लीला बताना और किस प्रकार से यमक को उन्होंने रचना की है, ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता कोई कवि कि इस प्रकार से कर पाएगा। नवमी तम गौरचंद्रम यह, उस गौरचंद्र भगवान को मैं नवमी मैं प्रणाम अर्पण करता हूं। यह जिन्होंने क्या किया, कुतर्क कर्कश आशयम, कुतर्क यानी जो हमेशा कुतर्क को प्रस्तुत करते हैं, जो शुष्क ज्ञानी व्यक्ति है जो केवल तर्क में विश्वास रखता है, और कर्कश आशयम जिस व्यक्ति का हृदय इस प्रकार से तर्क के कारण कठोर हो गया था, कर्कश आशयम उस कौन उस व्यक्ति को सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौमम उस सार्वभौमम को सर्वभूमान भक्ति भूमान, सर्वभूमा का अर्थ होता है हर एक व्यक्ति के स्वामी मतलब भगवान, सर्वभूमान भक्ति भूमान, भक्ति भूमान अर्थ है महान भक्त। ऐसे जो कुतर्की था जिसके हृदय में केवल कठोरता थी, उस सार्वभौम को उन सर्वभूमान भगवान का भक्ति भूमान महान भक्त बना दिया, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं नवमी प्रणाम अर्पण करता हूं। देखिए कितना सुंदर श्लोक है, जो केवल कुतर्क में विश्वास रखता था, जिसका हृदय कठोरता से पूर्ण था, उस सार्वभौम को जिन्होंने सर्वभूमान जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है उनका भक्ति भूमान उनका महान भक्त बना दिया, नवमी तम गौरचंद्रम उस गौरचंद्र भगवान को मैं प्रणाम अर्पण करता हूं। इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य का जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते ही चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार कर दिया, उनको एक बहुत बड़ा भक्त बना दिया। अभी इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि मैं तो यहां पर हूं लेकिन मुझे थोड़ा भ्रमण भी करना चाहिए, चलो मैं अभी थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर जाने का निश्चय करता हूं। तो अभी चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि मैं दक्षिण भारत जाऊंगा और वहां पर कृष्ण भक्ति का जो है वो प्रचार करूंगा, लेकिन मैं अकेला जाऊंगा, किसी को साथ में नहीं लेके जाऊंगा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का जो है वो मानस था। लेकिन कितने सारे भक्त वहां पर थे, सबसे पहले तो जो चार लोग आए थे नित्यानंद जगदानंद दामोदर मुकुंद, और अभी ये भी भक्त बन गए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, भक्ति भूमान बड़े महान भक्त बन गए हैं। उसके साथ साथ गोपीनाथ आचार्य वो भी जानते हैं, वो तो संबंधी निकले चैतन्य महाप्रभु के। अभी इतने सारे भक्त वहां पर हैं और हर कोई चाह रहा है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत यात्रा के लिए जाऊंगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या जा पाएंगे दक्षिण भारत, और जाएंगे भी तो अभी इन सब में से किसको लेके जाएंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे हमारे कल के सत्र में ठीक शाम को 5:30 बजे चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत की ओर प्रयाण। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।